यशाया अध्याय 28। यरूशलेम और एफ्राइम पर न्याय दंड। घमंड का मुकुट जो एफ्राइम के मतवालों का है, उनकी सुंदरता पर जो मुरझाने वाला फूल है, जो उपजाऊ तराई के सिरे पर, देखो यहावे के पास एक है जो शक्तिशाली और मजबूत है, जिसने एक शक्तिशाली ओलावृष्टि और एक मूसलाधार बारिश की तरह विनाश की आंधी और बाढ़ से पृथ्वी को नुकसान पहुंचाया है। एफ्राइम मतवालों के अहंकारी मुकुट को पैरों तले रौंद दिया गया है। इसकी सुंदरता मुरझाया हुआ फूल जो उपजाऊ घाटी के ऊंचाई पर स्थित है, और वह जैसे ग्रीष्म काल से पहले पके अंजीर के समान होगा, जिसे देखते ही जल्दी खा जाते हैं। उस दिन सर्वशक्तिमान यहावे अपनी प्रजा के बचे हुओं के लिए एक प्रतापी और सुंदर मुकुट ठहराएगा, और जो न्याय सिंहासन पर बैठा होता है उसके लिए न्याय की आत्मा, हाँ जो फाटक से शत्रुओं को पीछे धकेलते हैं, उनके लिए वह ढाल ठहरेगा। पुरोहित और भविष्यद्वक्ता भी दाख मधु पीकर डगमगाते हैं, वे मधु से बेहाल होकर नीचे गिर पड़ते हैं, वे मधु से लड़खड़ाते हैं। भविष्यद्वक्ता जब अपने दर्शन देखते हैं तभी भी वे पिए हुए होते हैं, और दर्शन पाकर भी भटक जाते हैं। न्यायाधीश जब न्याय करते हैं तो वे नशे में डूबे हुए होकर न्याय में गलती करते हैं, क्योंकि भोजन करने की जगह गंदगी से भरी हुई है और कहीं भी सफाई नहीं है। किसको सिखाए और किसको समझाए? क्या उन्हें जो अभी अभी दूध छुड़ाए गए बच्चे हैं, जो माँ के स्तन से अलग किए गए हैं? आज्ञा पर आज्ञा, आज्ञा पर आज्ञा, नियम पर नियम, नियम पर नियम, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ, परमेश्वर इन लोगों को हकलाते हुए होठों और विदेशी भाषा वालों के द्वारा बात करेंगे, जिन्होंने उन्हें इस प्रकार कहा, विश्राम यहाँ है, जो थके हुए हैं उन्हें आराम दो, विश्राम यही है, किंतु वे नहीं सुनेंगे। तब उनके लिए यहावे ने उनसे कहा, आज्ञा पर आज्ञा, आज्ञा पर आज्ञा, नियम पर नियम, नियम पर नियम, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ, जिससे वे ठोकर खाकर गिरकर घायल हो जाए और जाल में फंसकर पकड़े जाए। इस कारण हे ठट्ठा करने वालों, यहावे की बात सुनो। वह जो इस प्रजा पर शासन करते हैं, वे यरूशलेम में रहते हैं, क्योंकि तुमने कहा है, हमने मृत्यु से एक वाचा बांधी है और अधोलोक से एक समझौता किया है। जब यह कष्ट बढ़ जाए तब यह हम तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि हमने झूठ को अपना शरण स्थान बनाया है और झूठ की आड़ में हमने अपने आप को छिपा रखा है। इसलिए यहावे यूं कहते हैं, देखो मैंने जियोन में एक पत्थर, एक परखा हुआ पत्थर, नींव के लिए एक मूल्यवान कोने का पत्थर रखा है। मैं न्याय को नाप की डोरी और धर्मी को साहुल बनाऊंगा, तब झूठ का शरण स्थान ओलों से बह जाएगा और छिपने की जगह डूब जाएगी। मृत्यु से तुम्हारी वाचा टूट जाएगी और अधोलोक से तुम्हारा समझौता सिद्ध ना होगा। जब विपत्ति दंड के रूप में निकलेगी तब तुम कुचल दिए जाओगे, जितना तुम बढ़ोगे वह तुम्हें दबा देगी, क्योंकि हर दिन और हर रात किसी भी समय होकर वह निकलेगा, और इस बात से तुम डर जाओगे। किसी को फैलकर सोने के लिए बिछोना छोटा पड़ जाता है, और किसी को ओढ़ने के लिए चादर संकरी, क्योंकि यहावे उसी प्रकार खड़े हो जाएंगे जिस प्रकार वह पराजीम पर्वत पर खड़े हुए थे, और वह उसी प्रकार क्रोधित होंगे जैसे वह गिबियोन की घाटी में क्रोधित हुए थे। फिर से वह अपना काम करेगा जो अद्भुत और अचंभित है। इसलिए अब ठट्ठा करने वालों के समान मत बनो, नहीं तो तुम्हारी बेड़ियों को और अधिक मजबूत कर दिया जाएगा, क्योंकि प्रभु सर्वशक्तिमान यहावे से मैंने सारी पृथ्वी पर विनाश के विषय में सुना है। ध्यान दो और सुनो, सचेत हो जाओ और मेरी बातों पर ध्यान दो। क्या बीज बोने वाले के लिए एक किसान भूमि को जोतता रहता है? क्या वह भूमि को निरंतर पलटता और सींचता रहता है? क्या वह इसे समतल नहीं बनाता और इसमें सौंफ उगाता, जीरे को छितरा, पंक्तियों में गेहूं उगाता, जौ और बाजरे को उसके स्थान पर नहीं बोता? क्योंकि उसे बताए गए है और परमेश्वर उसे सिखा देते हैं। सौंफ की दवरी पटरे से नहीं की जाती और न ही जीरे के ऊपर गाड़ी का पहिया चलाया जाता है, किंतु सौंफ की दवरी तो लाठी से और जीरे की मुगदर से की जाती है। क्या दवरी में रोटी के लिए अन्न को चूर चूर किया जाता है? नहीं, किसान इसकी दवरी सर्वदा नहीं करता रहता। जब वह अपनी गाड़ी के पहिए को घोड़ों के द्वारा इसके ऊपर चलाता है, वह इसे चूर चूर नहीं करता। इसे नियुक्त करने वाला भी सर्वशक्तिमान यहावे ही अद्भुत युक्ति वाला और महाबुद्धिमान है।